ओम शांति। भाई जी के लिए तो पहले मैं कुछ चंद लाइन बोलना चाहूंगी, और वो भी सभी आपकी तरफ से। खुदा ने बेशकीमती नगीने निहायत ही बनाए हैं, उनमें से सबसे नायाब आज हमारी महफिल में आए हैं। जैसे आपने अनुभव में सुनाया कि आपके बहन कहते थे कि एक माता आपके लिए योग करती है, गीता पाठशाला चलाती है और वो आपके लिए योग करती है कि सन्यासी न बन जाए। कई बार हमारी माताएं जो है वो पूछती है कि जैसे हमारे पति ज्ञान में नहीं चलते हैं, हमारे बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो ऐसा क्या योग का प्रयोग करें जिसके आधार पर हम उनके बुद्धि का ताला खोल सके। तो ऐसी कोई युक्ति अगर आप बता सको तो हम सभी के लिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी।
सबसे पहले तो जिसके लिए हम योग करें या कर रहे हैं, उस व्यक्ति से हमें डिटैच रहना है। यदि मां सोचे मेरा बेटा ज्ञान में आ जाए, पत्नी सोचे मेरा पति ज्ञान में आ जाए, ये जो मेरा है यही बाधा है। तीन चार संडे पहले एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा ने कहा था, माताएं कहती है बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, कभी ये तो नहीं कहा मेरे देश की बुद्धि का ताला खोलो। जहां स्वार्थ है वहां कोई सकाश नहीं होगी, जहां निस्वार्थ भाव है वहीं सकाश पहुंच सकती है, जहां डिटैचमेंट है वहीं सकाश पहुंचती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस ड्रामा को भी थोड़ा समझना है, इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। जरूरी नहीं है कि जो हम मानते हैं वो भी माने, जरूरी नहीं है कि जिसको हमने भगवान समझा है और जहां हमारा निश्चय है वहां सबका निश्चय हो जाए, ये नहीं हो सकता है। हर एक का पार्ट, हर एक की बीमारी, हर एक का जन्म, हर एक का भाग्य अपना अपना है, इसको भी समझ लेना है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, परंतु फिर भी हमें उनकी सेवा करनी है, और ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द है, हमारे पास है, तो रोज अमृत वेला उन आत्माओं को इमर्ज करना, फिक्स टाइम उन आत्माओं से बात करना, उन्हें याद दिलाना, उनको स्मरण दिलाना कि तुम कौन हो, और उनको नॉन बीके नाम का टाइटल नहीं देना है कभी। हम कौन है उनको स्टैंप लगाने वाले? भावी ब्राह्मण, ये देखना कि ये देवकुल की ही आत्माएं हैं। हमेशा हम उस माता का उदाहरण देते हैं जिसके पति ने उसको 20 साल तक तंग किया, 20 साल तक बहुत सताया पवित्रता के लिए और हर बात के लिए, और हर संभव प्रयत्न किया कि वो सेंटर पर जाना बंद कर दे। 20 साल विरोध किया और एक दिन वो खुद ज्ञान में आ गया। इसका मतलब जब वो 20 साल विरोध कर रहा था तब भी वो देवकुल की ही आत्मा थी। इसके लिए ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है बीके और नॉन बीके, इसको पहले हटा देना है मन से। सभी देवकुल की आत्मा है। साकार महावाक्य है बाबा के, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं सारे विश्व का बाप हूं। ये भी उसी परमात्मा की संतान है। सबसे बड़ी बाधा हमारा, हम खुद हैं उनके ज्ञान में आने से के लिए, हमारा मोह और दूसरा हमारी निगेटिविटी उनके प्रति, क्योंकि हमने ये अंदर ही मन सोचा है कि हमने भगवान को पाया, हम महान है, ये कम महान है, ये अज्ञानी है, हम समझते हैं। निगेटिव भाव है, थोड़ा घृणा है। जैसे कोई माता है, उसका पति उसका युगल दारू पीता है और वो चाहती है कि वो ज्ञान में आ जाए, परंतु वो उससे नफरत भी करती है अंदर ही अंदर, और हो सकता है यही कारण है कि वो ज्ञान में नहीं आ रहा है। तो जिसको भी हमें ज्ञान में लाना है उसकी हमें मनसा सेवा करनी पड़ेगी। सबसे पहले सारी निगेटिविटी को हटाना पड़ेगा, उसके प्रति शुभ भावनाएं रखनी पड़ेगी और डिटैचमेंट के साथ रोज अमृत वेला, जैसे वो एक आत्मा है, ये नहीं कि ये मेरा भाई है, बच्चा है, बेटा है, पति है, पत्नी है, उसी भाव से उसको देखकर उससे बात करनी है और कुछ विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है। देखना है कि वो मधुबन में बैठा हुआ है कुटिया में, बाबा से बात कर रहा है, वो बाबा से दृष्टि ले रहा है, वो डायमंड हॉल में है, बाबा के सम्मुख है, और ये विजन बना देना है कि वो सेवाएं कर रहा है। अभी विरोध कर रहा है परंतु विजन ये बनाना है कि वो सेवाएं कर रहा है। तो इस रीति से रोज उसको सकाश देना। और दूसरी जो सुबह भी बात बताई थी, हृदय का रास्ता कहां से चालू होता है? पेट से। तो भोजन इतना पावरफुल बनाए, इतने उसमें प्रकंपन वाइब्रेशन भर दे प्रभु प्रेम के, कि जो वो खाए, जो भी खाएगा उसका हृदय शुद्ध होगा, परमात्मा प्रेम की स्थापना होगी, उस छाती पर ईश्वरीय प्रेम का झंडा गढ़ जाए। चहुतरफा प्रयोग। और उनको सबसे पहली बात, हम अपने मुख से ज्ञान ना सुनाएं। उनको ज्ञान में लाने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति होगा बाहर का, हम ना ज्ञान सुनाएं, क्योंकि हम सुनाएंगे तो वो विरोध करेंगे। ब्रह्मा कुमारी नाम भी नहीं लेना, चुप, क्योंकि उनको उस नाम से ही एलर्जी है, क्योंकि वहां उनके अहंकार हर्ट होता है, क्योंकि हम ये दिखा अब तक ये हमारे साथ थी और आज अचानक ज्ञानी बन गई और हम वही रहे और अब हमको ज्ञान सिखा रही है। यहां लड़ाई निश्चय की कम अहंकार की ज्यादा है, इसके लिए मुख से कुछ नहीं, कर्म से, चलन से, व्यवहार से और मनसा सकाश से ही वो ज्ञान में आएंगे।
कई बार जैसे माताओं को लगता है कि युक्ति युक्त चलना बड़ा मुश्किल होता है, और कई बार युक्ति का यूज करते हैं तो अंदर चलता है कि अरे हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। और जैसे खास करके माताओं को, जैसे अभी गणपति के दिन नजदीक है तो पूजा पाठ करना पड़ता है, और तब ऐसे लगता है कि अरे घर वालों को तो हम दिखावा करा रहे हैं लेकिन अंदर तो कुछ और चलता है, गणपति तो याद नहीं आता है लेकिन हमें तो शिव बाबा को याद करना पड़ता है। तो जब ऐसी दुविधा हो, ऐसी कोई परिस्थिति हो कि हमें घर वालों को खुश करना है, तो ऐसे समय पर हम क्या करें, हमारी धारणा भी ना टूटे और उनको हमें खुश भी रखना पड़े, तो ऐसे समय पर हम कौन सी युक्ति को अपनाएं?
सबसे पहले तो ये भी हो सकता है कि ज्ञानियों की सभा में कुछ भक्त भी छिपे हैं, ज्ञान के शिविर में भक्त अभी तक मरा नहीं है, सेंटर पर मुरली सुनने के बाद जाते जाते जो गणेश जी का मंदिर लगता है वहां पर अब भी सिर झुकता है। अगर कोई साधु महात्मा कह दे और कहे मैं तुम्हारा अच्छा भाग्य बनाता हूं तो हम तैयार है, भाग्य बता दो कुछ अच्छी बात है। तो पहले तो इधर ही अंदर भगत बैठा हुआ है, भक्ति अभी भी छूटी नहीं है, अभी भी मांगने के संस्कार है। दो संडे पहले मुरली चली थी, भिखारी, नौ प्रकार के भिखारी गिनाए थे बाबा ने उसमें, याचना, मांगना। पहले तो हम स्वयं उस भाव से मुक्त हो जाए। एक दूसरा, हां फिर कुछ दिखाने के लिए करना पड़ता है घर वालों के लिए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मत करो, पर वो करते हुए भी ज्ञान युक्त तो उसको करना है, वो करते हुए भी याद रखना है ये जो गणेश है मैं खुद हूं, ये जो देवी है जिसकी पूजा ये सब लोग कर रहे हैं मैं खुद हूं। और जैसे ये लोग देवी की पूजा कर रहे हैं एक दिन मेरी भी करेंगे, मैं ही वो दुर्गा हूं, मैं ही वो काली हूं, मैं ही वो शिव शक्ति हूं। इस भाव में वो सारी प्रोसीजर करते करते सबको भक्ति को ज्ञान में रूपांतरित कर देना है मन में. उनको समझाते नहीं बैठना है कि तुम भगत हो, तुम रॉन्ग हो, ये नहीं करना चाहिए. क्यों उनकी भक्ति हम छीन ले? भक्ति भी छीन लेंगे और ज्ञान में भी नहीं आएंगे तो बीच में फंस गए. बाप किसी की भक्ति छुड़ाने नहीं आते. भक्ति तो स्वतः ही छूट जाएगी जब उनको पता चलेगा कि ये है कुछ बड़ा. जब बड़ा लड्डू मिल जाएगा तो छोटा लड्डू अपने आप छूट जाएगा. किसी से जबरदस्ती अगर भक्ति छुड़ाओ तो क्रोध होगा और वो भी इनफैक्ट हम अंदर ही अंदर अपने अहंकार की ही तृप्ति कर रहे हैं. हम उनको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी जो मान्यता है वो गलत है, हम जिसको भगवान मानते हैं वो राइट है. यही तो द्वापर युग से होता आया. क्यों तलवारें चली? इस्लाम भारत में आया एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार. इसको मानो नहीं तो मार देंगे. हम भी एक हाथ में मुरली और एक हाथ में तलवार. ज्ञान में आओ नहीं तो तुम हमारे शत्रु. ऐसा ज्ञान थोड़ी ना देना है किसी को. ज्ञान ऐसे देना है कि उसके हृदय में प्रभु प्रेम जन्म ले ले, वो स्वयं आ जाए. और एक बात तो हमेशा याद रखना है, जो जितना ज्यादा विरोधी है वो जब ज्ञान में आएगा ना तो हमसे कई गुना आगे चला जाएगा. क्योंकि उसमें लगन है, तीव्रता है. जो बहुत धूप से आया है उसको छांव का ज्यादा महत्व है. जो छांव में ही बैठा है बचपन से उसको कोई महत्व नहीं है. मधुबन में छोटे छोटे बच्चे हमने देखे हैं, ओम शांति भवन की स्टेज पर जिन्होंने प्रोग्राम किए, दादियों के हाथों से जिनकी पालना ली, आज ज्ञान में ही नहीं है. तो जबरदस्ती किसी को नहीं करना है. दूसरा, उनके भक्ति भाव को ठेस नहीं पहुंचानी है. उनको ये मत कहो यू आर रॉन्ग. और यदि हमें उनके साथ रहना है और उनके साथ वो सब करना है, सत्यनारायण की पूजा करना है, लक्ष्मी की पूजा करनी है, दिवाली मनानी है, त्योहार करने हैं, भले करो, पर भक्त बनकर नहीं, ज्ञानी बनकर. और इस भाव से कि धीरे धीरे ये सब ज्ञानी बन जाएंगे, अहंकार से नहीं. तो भले रहे, सब करे, पर मन में ज्ञान का चिंतन हो. ओम शांति.
जैसे आपने अपने अनुभव में सुनाया था कि आपने एक ही बार बहुत बड़ा क्रोध किया और वो फर्स्ट एंड लास्ट था. लेकिन कई बार हम माताएं आपस में भी चर्चा करती है कि बच्चे सुनते नहीं है, पति सुनता नहीं है, तो हमें कई बार क्रोध करना पड़ता है. हम चाहते नहीं हैं, बाबा की श्रीमत पर चलना तो जरूर है, लेकिन फिर भी ये कठिनाइयां हमें आती है कि क्रोध करना ही पड़ता है. तो जब बच्चे सुनते नहीं है तो हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करें?
क्रोध का कारण है अधैर्य, क्रोध का कारण है अज्ञान. भले ज्ञान में कोई कितने भी साल से हो, परंतु उस समय वो अज्ञान में है. क्रोध का कारण है ड्रामा को न समझना. क्रोध का कारण है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस. इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है पति से, बच्चों से, वो ये करे, वो ये करे, वो ऐसा करे, वो वैसा करे, वो नहीं कर पाएंगे. हमारी इच्छा से संसार नहीं चलेगा. जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी. किसी से हमारी कोई अपेक्षाएं नहीं हो. हां, हर मां बाप चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो ज्ञान में आ जाए. ऐसा नहीं हो सकता है. ड्रामा के रास को शायद हमने नहीं समझा है. ऐसे कई मां बाप हैं जो कहते हैं हमारा इसका जन्म हुआ ना उसके बाद में ही हम ज्ञान में आ गए. तो ये जरूर कोई एडवांस पार्टी की आत्मा है. और हमने कई सारे बच्चे देखे जब बहुत छोटे थे तब बहुत ज्ञानी थे और बहुत ज्ञान सुनाते थे, और जैसे जैसे बड़े हुए कुसंग में चले गए. हम एक जगह थे जहां पर एक छोटा सा लड़का, इतना छोटा, हमारे लिए टिफिन लाता था सेंटर से. सनली पर बैठकर मुरली सुनाता था, बड़े बड़े लोगों का कोर्स कराता था छोटा सा. आज तो उसकी शादी हो गई, ज्ञान योग तो छूट गया. हर आत्मा जो हमारे घर में आ रही है हमारी भावना है कि वो ज्ञान में आ जाए बट नॉट नेसेसरी. कितनी सारी दादियां और कितने वरिष्ठ भाई है उनके माँ बाप लास्ट तक ज्ञान में नहीं आए. नॉट नेसेसरी. तो जब इस तरह की हम अपेक्षाएं रखते हैं इसका मतलब अज्ञान है. हम ड्रामा के रास को नहीं समझ रहे. हरेक का पार्ट अपना अपना है. बाबा बाबा से माताएं कहती है बाबा हमारा पति हमको बहुत मारता है. बाप कहते हैं तुमने भी मारा होगा. हिसाब किताब चुक तो हो रहे है. वो जो छोटा सा बच्चा आया है पालने में कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, मीठा मीठा, पर उसके हाथ में एक तलवार भी है. वैसे ही नहीं आई है उस घर में, हिसाब चुक तो करने आई है. गिन गिन कर हिसाब चुक तो करेगी. तो जो भी हमारे इर्द गिर्द है वो सब तलवार लेकर है. एक माँ बाप है जिनका बच्चा जन्म लेता है और जन्मते ही दो दिन के बाद पता चलता है उसके हार्ट में छेद है. 5 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए. माँ बाप गरीब है, दिन रात पैसा इकट्ठा करते हैं, यहां से उधार वहां से लोन ये सब करते हुए पैसा जमा करते हैं, बच्चे का ऑपरेशन कराते हैं और ऑपरेशन के 2 दिन के बाद बच्चा मर जाता है. क्यों आया था? 5 लाख रुपए तुमने दिए ही नहीं थे उसके, खाली लेने आया था वो, लेके चला गया. तो जो भी घर में बच्चे आ रहे हैं उन सब का अपना अपना पार्ट है, अपना हिसाब किताब है. और जरूरी नहीं है कि वो सब ज्ञान में आ ही जाएंगे. हम सोचे कि वो देवकुल की आत्माएं हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उतना ज्यादा क्रोध. ये तो हो गया आध्यात्मिक. दूसरा है मटेरियल, उनकी पढ़ाई. हरेक की बुद्धि अपनी अपनी. अभी हम कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो फर्स्ट आ जाए. नॉट नेसेसरी. उसका इंटरेस्ट ही उसमें नहीं होगा. हरेक को जरूरी थोड़ी ना डॉक्टरी बन जाए, बनना है, इंजीनियरिंग बनना है. उसका इंटरेस्ट खेल में है, खेलकूद में है, आर्ट पेंटिंग में है. उसको वहां इनकरेज करना है. जिसका जिसमें रुचि है उस तरफ उसको प्रोत्साहित करना है. पकड़ के जबरदस्ती सबको डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है थोड़ी ना है. और भी तो बहुत सारा संसार में है. वो हो सकता है कवि है, वो हो सकता है उसमें कुछ ऐसी कला है जो और किसी में नहीं है. हमारे हॉस्पिटल में एक भाई है, अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं आता है. ज्ञान में है, खाली मुरली सुनता है. उसका काम है फाइल इधर से उधर रखना, उधर से उधर रखना, बस. हमको याद है एक बार हम हमारे ग्रुप में चर्चा कर रहे थे, बहुत गहरी ज्ञान की कोई पॉइंट थी. उसको तो कोई मुरली भी पता नहीं रहता, थोड़ा बहुत सुनता है, पढ़ना आता नहीं, लिखना आता नहीं. तो ऐसा डिस्कशन कर रहे थे और अचानक सबने अपनी अपनी पॉइंट्स बताई ज्ञान का कुछ डिस्कशन. हमने सोचा और भी कुछ हो सकता है. उसने जो ऐसी एक पॉइंट बता दी जो इतनी नई थी, जो किसी ने सोची भी नहीं थी. तो हरेक की अपनी विशेषता है, हम उस विशेषता को नहीं जान पा रहे. खलील गिब्रान ने लिखा है यूअर चिल्ड्रेन आर नॉट यूअर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू. अपने तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है. तो क्यों उनसे हम इतनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? पति वो ये करे, वो करे, वो ऐसा करे. वो जो है वो है. हो सकता है वो जो बच्चा अभी है, जो कुमार है, हम सोचते हैं वो ज्ञान में आ जाए, नहीं आएगा. हो सकता है उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे होंगे, बाद में ज्ञान में आएगा. उसके जो बच्चे वो उसको ज्ञान में लाने वाले. हम अभी कर रहे हैं कि वो अभी आ जाए. समय से पहले और भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है. तो क्रोध का जो जड़ है उस पर काम करना है. ऊपर ऊपर से क्रोध से काम करने में नहीं होगा. कई लोग एंगर मैनेजमेंट पे कोर्स और सब होता है ना, उसमें बताते हैं उल्टी गिनती चालू करो, 100, 99, 1, 2, 3, 4. ये सब आउटसाइड मेथड्स है. उसका जड़ क्या है उस पर काम करना है. जैसे एक पिताजी, उसका बेटा होता है बहुत तगड़ा, छोटा सा, वो बाकी कॉलोनी के जितने बच्चे हैं सबको पकड़ पकड़ के पीटता है. उसको इतना क्रोध आता है तो उसके पिताजी उसको एक बार एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक सुनाते हैं. इसके बाद तुमको जब भी क्रोध आए और तुम किसी को पीटने लगो ना, 1 से लेकर 100 तक गिनती चालू करना, ताकि तब तक क्रोध थोड़ा शांत हो जाए ना. तो एक बार वो देखता है उसके पिताजी, उसका बेटा एक दूसरे लड़के के छाती पर बैठा हुआ पकड़ के है, और नंबर गिन रहा है 1 2 3 4, तो वो बेटा है मैंने तुमको कहा था ना क्रोध नहीं करना है, वो कहता है नहीं कर रहा हूं, वही तो कर रहा हूं, 100 गिनूंगा और तब तक ये भाग सकता है, 100 पूरे हो जाएंगे फिर इसको ठिकाने लगाऊंगा। तो ये टेक्निक्स काम नहीं करती है, टेम्पररी ठीक है, पर क्रोध का सूक्ष्म कारण अधैर्य, धैर्य धारण करना है, अज्ञान एक्सपेक्टेशंस उन पर काम करना है। ओम शांति।
कई बार ऐसे होता है कि जहां पर हिसाब किताब की बात आती है और व्यक्ति व्यक्ति का संबंध होता है तो चलो हम ज्ञान का इस्तेमाल कर ही लेते हैं, लेकिन जब शरीर के कर्म भोग शुरू हो जाते हैं तब देखा जाता है कि और इरिटेशन बढ़ती है और अपेक्षाएं बढ़ती है। और जैसे बाबा कहते हैं कि कर्म भोग जब बढ़े तब योग का प्रयोग करो, तो वो योग का प्रयोग भी उस समय पर नहीं होता है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए जब हम कोई बीमारी से गुजर रहे हैं?
पिछले कई सालों से हमने असंख्य ब्राह्मण आत्माओं को अपनी आंखों के सामने शरीर छोड़ते हुए देखा है, कोई बहन कोई भाई कुछ दादियां कुछ सेवाधारी, बाहर के तो है ही है, और इसमें देखा है कि कुछ कुछ आत्माओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, पालू दादी शांतामणि दादी मनोरिंद्रा दादी, यहां प्रिक कर रहे वहां प्रिक, यहां सेंट्रल लाइन यहां लाइन, कुछ नहीं शरीर से डिटैच, और कुछ कुछ टू मच सेंसिटिव, एक लाइन भी एक इंजेक्शन भी हालत खराब, ये तुरंत नहीं होगा, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तब कहीं शरीर की, क्योंकि हमने बड़े बड़े योगियों को छोटी छोटी बीमारियों में हलचल में आते देखा है, 2-2 बजे उठकर योग करने वाले और थोड़ा सा बुखार क्या हो गया, अरे बाप रे भयंकर हलचल, इतने सारे प्रश्न उनके मन में, बहुत डिस्टर्ब, सब रह गया ज्ञान योग। एक तो बहन ऐसे थे कैंसर सारे शरीर में फैल गया, मरने की जस्ट लास्ट मोमेंट है, बाबा और बाबा की याद तो बहुत दूर, मसाला डोसा खाना है, और मसाला डोसा खाते खाते ही शरीर छोड़ा, बाप और वो सब चला गया, सब गुम हो गया। एक भाई जो कहीं पर समर्पित था और बहुत सारी जीवन भर सेवाएं की, बहुत सेवाएं की, पर ज्ञान और योग के लिए समय नहीं था, बस सेवा 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 सेवा, एडमिट हुआ बीमारी हो गई, सेवाधारी था वो सेवाधारी 2 दिन छुट्टी पर चला गया तो इतना हलचल में आ गया, कहने लगा कि इससे अच्छा मैंने शादी कर ली होती तो आज पत्नी और बच्चे मुझे देखने के लिए होते, ये सब संकल्पों के साथ ही शरीर छोड़ा। तो बीमारी सबसे बड़ा पेपर है, सबसे बड़ा, अचानक कैंसर डिटेक्ट हो गया, अचानक कैंसर, अचानक कीमोथेरेपी और अचानक अब रेडियोथेरेपी और बहुत सारा कुछ करना है, ये भी ठीक, परंतु जब लग रहा है कि सारे रिपोर्ट्स गलत है पर कैंसर है कहां उसका पता नहीं चल रहा है, टेस्ट पर टेस्ट हुए जा रहे हैं, टेस्ट पर टेस्ट हुए जा रहे हैं, अंदर हलचल है बेचैनी है, लंबा समय का अभ्यास चाहिए तो ही बीमारी की अवस्था में स्थिर रह सकते, नहीं तो जब माइग्रेन का हेडेक होता है कहां है बाप और कहां कौन, सब कुछ गुम हो जाता है। 104 बुखार हमारे यहां कुछ कुछ एक दो ऐसे है जो ज्ञान में नहीं है पर ज्ञान उनको पता है, तो वो कोई बीके बीमार पड़ता है तो कहते बताओ वो ये थ्रोट एग्जामिनेशन अब करो बाप को याद। तो बीमारी तो बहुत बड़ा पेपर है, उसके लिए लंबे साल समय का अभ्यास चाहिए। एक दूसरा, जब बीमार हो जाए तो सबको पता है हम ये सोचना है कि हिसाब किताब चुक तो हो रहे हैं, अच्छा ही है बीमारी आई 1995 की 31 दिसंबर अव्यक्तवाणी है, जब भी कोई बीमारी आए तो क्या कहो, वाह व्याधि वाह, यदि तुम्हारे घर कोई मेहमान आए उसकी अच्छी स्तुति करो तारीफ करो तो वो खुशी खुशी विदा होता है. तो बीमारी भी जब आए तो कहो वाह ऐसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिसीज, ऐसा कैंसर तो आज तक किसी को नहीं हुआ, वाह बहुत बढ़िया. रामकृष्ण परमहंस को थ्रोट कैंसर हो गया था. कुछ ग्रुप था जो उनको अवतार मानते थे, वो कहते थे देखो अवतार को कैंसर होता है क्या, हंसी उड़ाते थे उनके. एक बार ऊपर से गिर गए थे हाथ टूट गया, वो कहते थे देखो तुम्हारे अवतार का फ्रैक्चर हो गया. तो एक तो विधि है कि उसको हल्का कर देना हंसी मजाक से, ठीक है बीमारी हो गई सबको होती है, हमारी तो बहुत कम है. हॉस्पिटल में एक बहन आती है यंग सेंटर पर समर्पित बहन, स्कूटी से सेवा के लिए जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, नेक इंजरी हुई, दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालिसिस, हाथ भी नहीं हिला सकती पिछले कई वर्षों से, ऐसी पड़ी है. परंतु उसकी अवस्था बहुत अच्छी है, जरा भी दुख नहीं, जरा भी चिंता नहीं. कई बार हम सोचते थे उसको एंटी डिप्रेशन चालू करें क्या, पर जरूरत ही नहीं है, शी इज सो हैप्पी. उस परिस्थिति को उसने स्वीकार कर लिया है कि बाबा ने, और अभी कोई चांस ही नहीं है कि उसका इंप्रूवमेंट, सब जगह ट्रीटमेंट हो गई, एम्स मुंबई सब जगह, कुछ नहीं किया जा सकता है. उसकी लौकिक बहन उसकी सेवा में है, उसको उठाने के लिए और व्हीलचेयर पर बिठाने के लिए 3 लोग चाहिए, पूरा पकड़ के ऐसे उठाने के लिए, कुछ नहीं कर सकती है, मुंह से खिलाना पड़ता है चम्मच से किसी को. कितना भयंकर और भारी हिसाब किताब है. यंग अभी 30 भी उम्र नहीं है, दिन रात सेवा है, परंतु स्थिति टॉप मोस्ट, ऊंची अवस्था है, ज्ञान का चिंतन है, बाबा से प्यार है. उसकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगी थी, उसने हमसे एक बार कहा था मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है. कितना अच्छा वाक्य है, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है, यही मेरा हिसाब किताब है. और वो हिसाब किताब भी नहीं बोलती रहती है, वो अपनी मुरली पढ़ती रहती है, सुनती रहती है, उसकी बहन उसकी सेवा में. तो ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी स्थिति टॉप, और कुछ ऐसी आत्माएं छोटी सी बीमारी और एकदम हिल जाते हैं, ऐसे हिलते हैं कि बाप रे बाप, इतने प्रश्न पूछते हैं कि क्या उत्तर दें अब उनको, जैसे कैंसर से भी बड़ी कोई बीमारी होगी. इतने सर्दी खांसी के लिए इतने 100 प्रश्न होते हैं उनके मन में, इंटरनेट पे सब कुछ पढ़ के आ गए होते हैं, हर बीमारी का साइड इफेक्ट उनको पहले ही पता है, लिखने से पहले अच्छा क्या लिख रहा है, एमोक्सिसिलिन उससे ये होता है. जो लोग इंटरनेट पर जाकर दवाइयों के जितने ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ते हैं उनको उतने ज्यादा होते हैं. हमारे पास गरीब और वो पेशेंट आते हैं ग्रासिया, जो हम लिख देते हैं उनका विश्वास ऐसा है कि ठीक हो जाएंगे, ठीक होके चले भी जाते हैं. और वीआईपी और बड़े बड़े उसी बीमारी से ठीक होने के लिए कितना टाइम लगता है. तो बीमारी में अच्छा लड़ोल अवस्था रहे, बाप की मदद बाप का साथ, शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे, प्रेम से परिस्थिति को स्वीकार कर लेना है. और दादी जानकी कहती है मैं रोज अमृत वेले 5 मिनट अपने शरीर को सकाश देती हूं, अपने ही शरीर को सकाश देना, जो एनर्जी ब्लॉकेज हुई है कहीं ना कहीं उसको खोलने हैं, जो निगेटिव संकल्प है वही मेरे बीमारी को बढ़ा रहे हैं. ओम शांति.
ओम शांति. समय की गरिमा देखकर हम सभी यहां पर ही इस प्रश्न उत्तर के सेशन को समाप्त करते हैं.